Amúgy jelenti, hogy rendőrségben nem jön, és ha vágyak, csak mindentem én az azt megsérül, hogy már szükség, de nem ahogy azt tudom tartani, de miért nem volt, hogy szóval nem rúgok a dáma, olyan dáltig szóval dáltig, amúgy egy kis mítségen. Rúgni kellene, de se rétig a dáltig, és se válszadik orra. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. तो बारहवां जो अध्याय है वो उसका शीर्षक है भक्ति योग। तो जैसे भगवान ने अर्जुन को जो सुनाया था दसवें अध्याय में बहुत सारे ऐश्वर्य, और उसके बाद फिर ग्यारहवें अध्याय में भगवान ने उनको पूरा विराट रूप बता दिया। तो अभी अर्जुन का इच्छा है कि वो भक्ति योग के विषय में सुनना चाहता, वो इतना रुचिकर नहीं लगा था कुछ खास, विराट रूप सुना लेकिन पता नहीं था ना, नहीं तो पूछता ही नहीं। अर्जुन सोचे कि मुझे तो पता ही नहीं था कि विराट रूप ऐसा होगा, नहीं तो मैं पूछता ही नहीं तुम्हें कि मुझे विराट रूप दिखाओ। अभी विराट रूप देख लिया तब इंटरेस्ट नहीं लगा। तो भगवान अर्जुन का इच्छा था कि वो भगवान के भक्ति योग की महिमा फिर से बताए, क्योंकि वो तो भक्त है और विराट रूप तो जनरली ज्ञानी लोग फॉलो करते हैं या फिर मायावादी लोग फॉलो करते हैं। तो मैं जो कर रहा हूँ वो सब सही है कि नहीं, उसको कंफर्म करना चाहते थे भगवान से। तो चैप्टर 12 में तीन भाग है, श्लोक 1-7, जिसमें भगवान कहते हैं भक्ति जो है वो निर्विशेषवाद से पर है। भक्ति सुपीरियर टू इम्पर्सनलिज्म, भक्ति निर्विशेषवाद से श्रेष्ठ है। दूसरा सेक्शन है 5 श्लोकों का, 8-12। जिसमें भक्ति की क्रमिक अलग अलग स्टेजेस बताए, स्टेप बाय स्टेप, दैट इज लाइक प्रोग्रेसिव स्टेजेस ऑफ डिवोशन। अगर तुम ये नहीं कर सकते तुम ये करो, अगर ये नहीं कर सकते तो ये करो, ऐसे भगवान बता रहे हैं। हाँ, पहले ये करो, अगर ये नहीं कर सकते तो फिर ये करो, अगर ये नहीं कर सकते ठीक है ये करो, ऐसे। या स्टेप डाउन होता जाता है, भगवान सबसे उत्तम बताते फिर एक एक करके लूज करते, फ्लेक्सिबल करते हैं। ये नहीं हो सकता ये कर लो, ये नहीं हो सकता ये तो कर लो, ऐसा। लास्ट सेक्शन है 13-20, 8 श्लोकों का, जिसमें ये बताया कि ऐसे कुछ गुण है, वो गुण क्वालिटीज गुण जिससे कोई भगवान को प्रिय बन सकता है, भगवान को प्रिय बनने के गुण। क्योंकि हर एक श्लोक में भगवान कहते हैं वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है, ऐसा भक्त, ऐसा भक्त है, ऐसा मुझे बहुत प्रिय है। क्वालिटीज विच यू नो एंडियर और हाउ यू से मेक यू डियर टू कृष्णा। So, ये श्लोक का शुरुआत ही बहुत क्लियर है कि दो प्रकार के जो फॉलोअर होते हैं उसको यहाँ पर अर्जुन एकदम लास्ट क्लियर करना चाहता है, बस बता दो क्लियर कर आपका ओपिनियन क्या है भगवान। सो चैप्टर 12 का पहला श्लोक पढ़िए।
अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए?
हाँ, तो एकदम क्लियर बात पूछा है, कोई इधर उधर का बात नहीं, एकदम क्लियर पूछ लिया। एक वो जो कि निराकार की उपासना करता है वो, और एक जो कि साकार की उपासना करता है, दो में से उत्तम कौन है? एकदम क्लियर पूछ लिया, हु इज द बेस्ट। क्योंकि मायावादी और निराकरवादी और साकरवादी इस प्रकार की भावना वाले जो लोग हैं वो सृष्टि की शुरुआत से चल रहे हैं, डीप रूटेड है। क्यों मायावाद इतना फैला हुआ क्यों है? क्योंकि बड़े बड़े लोग विशेषकर जैसे शंकराचार्य ने इस सिद्धांत की स्थापना की थी, भगवान निराकार है। हालांकि लॉर्ड शिव है, भगवान के आदेश से उन्होंने ये काम किया था, लेकिन अभी उन्होंने संस्कृत के पाठशाला खोली तो आज ज्यादातर संस्कृत के वेदांत पंडित जो होते हैं मायावादी होते हैं। और प्रभुपाद बताते हैं कि जो भक्त नहीं होते वो सब मायावादी है, सब मायावादी। कैसे? क्योंकि जनरली वो लोग कृष्ण को विश्वास ही नहीं करते, जो भी धर्म का थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखते हैं और वैष्णव नहीं है तो सब मायावादी है। क्योंकि या तो कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे, या उनको निराकार मानेंगे, या उनको टेम्पररी मानेंगे, या सभी भगवान ऐसा मानेंगे। इस तरह से बहुत सारे अलग 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 प्रकार के उनके वाद होंगे, फिलॉसफी में दर्शन होंगे, ये सारे मायावाद के अंश हैं सब। इसलिए श्री प्रभुपाद बार बार मायावाद को काट रहे हैं। भगवद गीता में मायावाद की एक पूरा थीम है, मायावाद थीम। अब भगवद गीता के सारे 18 चैप्टर खोल के देखेंगे तो अलग 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 चैप्टर में आपको सब जगह परपट में प्रभुपाद ने मायावाद को काटा है, निराकार को काटा है। क्यों इतना? क्योंकि ये बहुत फैला हुआ है सब जगह। श्री प्रभुपाद अपने गुरु की व्यास पूजा में जो लिखा था एक पूरा काव्य, तो उस काव्य में एक लाइन उन्होंने जो लिखा था वो उनके गुरु को बहुत पसंद आया था, जिसमें था कि निर्विशेष निराकारवाद। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने ये दोनों ही निर्विशेषवाद और निराकारवाद जो है इसको भारत से उकेर के फेंक दिया बाहर। तो भक्तिदास सरस्वती महाराज को ये चीज बहुत अच्छी लगी, इसलिए प्रभुपाद का भी प्रणाम मंत्र में आप क्या पढ़ रहे हो? निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक बताया निर्विशेष शून्यवादी। निर्विशेष जितने भी लोग मायावादी थे वो सबको, उन सबको भी उद्धार किया प्रभुपाद ने। निर्विशेष शून्यवादी, शून्यवादी का अर्थ वॉइडिज्म, जन्म के बाद मृत्यु के बाद कुछ है नहीं, शून्य, सब कुछ शून्य। बुद्धिस्ट, बुद्धिज्म, सब कुछ शून्य है, दोनों एक जैसा ही है, ज्यादा फर्क नहीं है उसमें। वो प्रच्छन्न मायावाद है। तो श्रील प्रभुपाद श्रीमद भागवतम के सेकंड कैंटो के 10 चैप्टर में ऐसा कहते हैं, 35 श्लोक के तात्पर्य में, कि दो प्रकार के मायावादी होते हैं, एक तो विराट रूप को मानने वाले होते हैं और एक ब्रह्म ज्योति को मानने वाले होते हैं। तो विराट रूप को मानने वाले लोग होते हैं कि भगवान सब जगह फैल गए, सब जगह भगवान है, और दूसरे होते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति को मानते हैं, निराकार ब्रह्म को मानते हैं। तो दोनों ही वास्तव में अपूर्ण है, और दोनों ऐसा सोचते हैं कि जब भगवान पृथ्वी पे आते हैं तो हमारी तरह मनुष्य शरीर स्वीकार करते हैं, दोनों ही ऐसा मानते हैं। तो कहीं पर भी मायावाद का थोड़ा भी हल्का सा स्मेल भी आ गया ना, तो भी वैष्णव उसको पहचान लेते हैं, हाँ यहाँ पर मायावाद है। ये इस प्रकार का शास्त्र का अध्ययन आप सब भक्तों को करना चाहिए कि जब आप भक्ति शास्त्र पढ़े हो, भगवद गीता पढ़ते हो, प्रभुपाद के लेक्चर सुने हैं, प्रभुपाद की बात सुनी है, इतने सारे, तो कभी भी कोई भी ऐसा कोई उल्टा सीधा फिलोसॉफी आपके सामने आ जाए, एक बात भी अगर गलत निकल गई किसी के द्वारा, तो आप उसको पकड़ लेना, ये डाइजेस्ट नहीं होगा, चाहे फिर वो इसका भक्त क्यों ना हो, ये डाइजेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज तक हमने प्रभुपाद के लेक्चरों में, प्रभुपाद के बुक्स में, के भक्तों के द्वारा कभी ये बात को समर्थन नहीं हुआ है। तो इस तरह से आपको ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और अपने विचार को कंफर्म करने के लिए आध्यात्मिक अथॉरिटी जो वरिष्ठ भक्त होते हैं उनके पास जाके इसको कंफर्म करना चाहिए कि मैं ऐसा मानता हूँ कि एक बात सही है। अगर हाँ तो आपका विश्वास प्रबल हुआ, अगर आप सोचते हो कि नहीं, वो कहते कि नहीं इसको इस तरह से समझना है, तो आपको करेक्ट योर सेल्फ। तो इस तरह से हमें शास्त्र को अध्ययन करना चाहिए। तात्पर्य मिश्र प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण हैज नाउ एक्सप्लेन अबाउट द पर्सनल, द इम्पर्सनल एंड द यूनिवर्सल, है ना, पढ़िए तात्पर्य।
अब तक कृष्ण साकार, निराकार एवं सर्वव्यापक को समझा चुके हैं और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं। सामान्यतः अध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करते हैं। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन है, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। यह सर्वाधिक प्रत्यक्ष है और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन है। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान ने बताया है कि जीव भौतिक शरीर नहीं है, वह आध्यात्मिक स्फुलिंग है और परम सत्य परम पूर्ण है। सातवें अध्याय में
ओके, तो अर्जुन वास्तव में ऐसे पूछना चाहते हैं भगवान को कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। प्रभुपाद तात्पर्य में ऐसे लिखे हैं कि वो अपनी अपनी स्थिति के विषय में पूछना चाहते हैं कि वो स्वयं जो कर रहा है भक्ति, वो ठीक है कि नहीं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि वो अपने विषय में पूछना चाहता है, लास्ट पैराग्राफ पढ़िए।
इस तरह सचमुच में अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं। अब अर्जुन यह निश्चित कर लेना चाहता है कि कौन सी विधि सुगम है और इन दोनों श्रेणियों में से कौन सर्वाधिक पूर्ण है। दूसरे शब्दों में वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है, क्योंकि वह कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरूप है। वह निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं है। वह जान लेना चाहता है कि उसकी स्थिति सुरक्षित तो है। निराकार स्वरूप चाहे इस लोक में हो या चाहे भगवान के परम लोक में हो, ध्यान के लिए समस्या बना रहता है। वास्तव में कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिंतन नहीं कर सकता। अतः अर्जुन कहना चाहता है कि इस तरह से समय गंवाने से क्या लाभ। अर्जुन को 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस तरह वह एक ही समय अन्य सारे रूपों को समझ सकता है और कृष्ण के प्रति उसके प्रेम की किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता। अतः अर्जुन द्वारा कृष्ण के इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने से परम सत्य के निराकार तथा साकार रूपों का अंत स्पष्ट हो जाएगा।
तभी तो अंत भगवान का जो उत्तर आएगा वो होगा फाइनल डिसीजन। अभी इसमें कोई वाद विवाद नहीं, कोई मिस इंटरप्रिटेशन नहीं, कुछ नहीं। भगवान बता दिया, बस हो गया बात। नाउ नोबडी कैन क्लेम दैट नो नो। आप सोचिए, ये अर्जुन ने इसलिए पूछ लिया जानबूझ करके, बहुत इंपॉर्टेंट था कि उनको पता था कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, ये डिविजन है लोगों का। तो आप क्या कहते हो प्रभु, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है? मैं तो आपका भक्त हूँ, मैं तो आपका साकार स्वरूप को मानता हूँ, तो मैं जो मानता हूँ वो सही है, या फिर इसमें आपका ओपिनियन क्या है कि दोनों सही है, या फिर वो ज़्यादा अच्छा है मैं गलत हूँ? और यू वॉन्ट टू से वन यू से दिस मिस डन, हो गया सारे वेद का सार आ गया वो।
इम्पल्सलेस फिर इसमें क्या बोलते हैं? बिकॉज इम्पल्सलेस जैसे शंकराचार्य ने भी कमेंट्री दी है, फिर वो यहाँ पे जब क्लियरली भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तो व्हाट डज ही से? बिकॉज बाकी सब जगह तो वो इंटरप्रिटेशन करते आते हैं, समझ में आता है, बट यहाँ पे तो कृष्ण इज हिमसेल्फ सेइंग दैट ये चीजें दिस इज इनफीरियर है।
आई मीन दे यूज द संस्कृत जगलरी and they modify their versions with this. So of course I don't know exactly what they interpret with this, iska interpretation kaise karte hain, but they give more emphasis, you know, unki itni expertise hoti hai ki ye jo shlok hai text number 2 next jo hai usko apne hisab se prastut kar sakte ho. Of course iska arth ye nahi ki hum unke samne dar ke mare baithe, nahi, ye seedha seedha bata sakte hain, clear cut, this is what Krishna says. Don't try to misguide people and yourself. This is what Krishna says here. That who is the best? Next.
श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्धि माने जाते हैं।
क्लियर बता दिया, जो मेरी साकार की पूजा करते हैं। श्लोक पढ़िए।
मध्यावेश मनो ये
मध्यावेश मनो ये
मध्यावेश मनो
नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर युपे तास्ते मे युक्त
तमा युक्त तमा मता। एकदम क्लियर आंसर, एकदम क्लियर आंसर बताया भगवान ने कि जो मेरी साकार स्वरूप की उपासना करने वाले लोग हैं, जिसके मन मेरे साकार स्वरूप में लगे हैं और जो मेरी भक्ति से पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, वो श्रेष्ठ है मेरे मत के अनुसार। दे आर बेस्ट, दे आर द बेस्ट टू बी द मोस्ट परफेक्ट, ऐसा स्पष्ट कह दिया भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को। तो इसलिए भक्त जो होता है, प्रभुपाद तात्र में कहते हैं कि भक्त हमेशा एक्टिव रहता है। प्रभुपाद तात्र में क्या लिखे हैं, समटाइम कभी कभी वो जप करता है, कभी भगवान के विषय में सुनता है, कभी पुस्तक पढ़ता है, कभी प्रसाद बनाता है, कभी भगवान के लिए कुछ शॉपिंग करने जाता है, कभी मंदिर में बर्तन साफ करता है। इसलिए जो कुछ भी करता है उसका एक भी कार्य ऐसा नहीं होता जो कृष्ण के बिना वो संपन्न करता हो। कृष्ण के साथ ही रहता है हमेशा, इसलिए एक्चुअली वो पूर्ण समाधि में रहता है निरंतर, उसका हर एक काम में कृष्ण होते हैं। और ये लोग, उनके तो शरीर नहीं है तो फिर काम क्या करें, काम कहाँ से करेंगे, शरीर को मानते ही नहीं तो उनका तो सब बंद है, बात करें किससे करें?
पहलवानी करते
हैं,
पहलवानी करते
हैं। अब सोचिए क्या, अब वो खा तो पहले उसका खाना ही बंद हो जाएगा, जब भोग ही नहीं लगेगा तो खाओगे क्या? भोग किसको लगाओगे? आकाश को भोग लगाओगे, किसको लगाओगे? विराट रूप को भोग लगाओगे, वो तो खा जाएंगे कुछ भी नहीं बचे। आई मीन मायावादियों के लिए बात को समझना मुश्किल है, लेकिन प्रभुपाद बताते हैं कि भक्त के लिए बड़ा आसान है, बड़ा आसान है कि वो निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है और इस तरह से वो श्रेष्ठ है। आई मीन मुश्किल कार्य है फिर भी उसको पकड़ के रखते, जो आसान है उसको छोड़ देते। आई मीन इसको भी मूर्ख बोलते हैं और किसको बोलते हैं? मूर्ख इसको भी बोलते हैं, देयर फूलिश। लेकिन अर्जुन बड़ा प्रसन्न हो गया, हाँ कृष्णा, यू नो मैं सोचता था कि मैं सही हूँ गलत हूँ, कृष्ण बता दिया नहीं तुम सही हो अर्जुन। आई एम सेफ। लेकिन फिर ये लोग जो होते हैं, जो आपका निराकार रूप की प्रार्थना करते हैं, उन लोग को क्या कुछ मिलता है? कुछ ट्रॉफी, कुछ कुछ तब देते हो, कुछ क्या देते हो? व्हाट दे गेट, यू नो, व्हाट इज देयर अटेनमेंट? उनको कुछ तो मिलता होता है ना, कुछ तो मिलना चाहिए ना उनको। आई मीन आई एम जस्ट आस्किंग कि क्या उनको कुछ मिलता है या फिर ऐसे ही बादल की तरह बिखर के क्या होता है उनका?
दे गेट लॉस्ट इन दिस। मेरी
वो अर्जुन का प्रश्न है कि उनका होता क्या है। अगर वो लोग करते हैं निराकार की उपासना, चलो मैं तो मान लिया कि तुमने कहा ये श्रेष्ठ, मैं मान लिया। लेकिन वो लोग जो श्रेष्ठ तुम्हारे आधार से, कृष्णा आप जो बता रहे हो उसके आधार से वो श्रेष्ठ नहीं है, तो उनका उनको क्या प्राप्त होता है बाद में? नेक्स्ट।
लेकिन
दोस्त लोग है ना,
तीसरा चौथा। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों के वश में, इंद्रियों को वश में करके तथा सबो के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं।
तो यहाँ पर लिखा कहा गया है कि मुझे प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, वो भी आते तो मेरे पास ही है, ऐसा भगवान बताया यहाँ पर। जैसे समझ लो कि एक भगवान कृष्णा एक समुंदर है और निराकरवाद एक नदी है और साकरवाद भी एक नदी है, ऐसे दोनों नदी आती है अंत में तो समुंदर के पास ही है। जैसे भगवान यहाँ पर बताया कि लास्ट एट लास्ट अचीविंग, वो अंत में मुझे प्राप्त करते हैं। यहाँ पर दो चीज़ समझनी चाहिए कि अंत में प्राप्त करते अर्थात कि उनको ये सारी क्रियाओं के बाद अंत में अगर सफल हो गया तो मिल गया, यू नो, भगवान का प्राप्ति, भगवान को प्राप्त कर। और भक्त में पहले से ही कृष्ण को मिल जाता है, वो पहले ही मिल जाता है कृष्ण, वो इसके अंत में मिलता है। दूसरा एक चीज है कि यहाँ पर जो यहाँ पर भगवान कहता है ना कि मुझे प्राप्त करता है, तो मुझे प्राप्त करते हैं इसका दो अर्थ होते हैं। मुझे प्राप्त करना जो भक्तों के लिए था वो तो डायरेक्ट उसको कैसे समझे, जैसे एक राजा है वो अपने राज्य में है और राज्य के भीतर एक महल है और महल में राजा खुद बैठा है, तो वो लोग ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने वाले लोग हैं, वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं, वो राज्य में प्रवेश करते हैं, लेकिन राजा के साथ बैठ के बात नहीं कर सकते। लेकिन भगवान के भक्त होते हैं वो डायरेक्ट भगवान के पास जाते। जो जिसकी उपासना करेगा, पहले आया था नौवें अध्याय में, जो जिसकी उपासना करेगा वो वहीं पर जाएगा। तो अगर कोई निराकार की उपासना करेगा तो साकार के पास थोड़ी जाएगा, तो निराकार के पास ही जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पर शायद ऐसा हो सकता है कोई ऐसा इसको गलत समझे कि वो भी मेरे पास ही आते हैं, यू नो, वो इंटरप्रिटेशन कि देखो भगवान ने दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया है, ऐसा कहेंगे कोई तो। कोई भी आप करो, यू नो, जो बुद्धिशाली लोग हैं वो ये कर लेंगे, जो अनपढ़ लोग हैं वो भक्ति कर लेंगे, ऐसा कहेंगे वो लोग, मायावादी लोग। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए इस तरह से यहाँ पर कि अगर कोई व्यक्ति किसी वैष्णव की कृपा से अगर कभी ऐसा निराकारवादी भक्त के एसोसिएशन में आ गया तब जाके शायद वो कृष्ण भक्त बन सकता है, लेकिन अन्यथा उसको तो निराकार ज्योति में ही रहना पड़ेगा। तो माम एव, आते तो मेरे पास ही है, मेरे माम एव अंत में, दे कम टू मी ओनली, ऐसे। तो इस चीज को बहुत ज्यादा क्लियर करेंगे क्योंकि भगवान अभी ये क्लियर करना चाहते हैं ना कि मैंने दो चीज को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया, एक रूप से अपीयरिंग ऐसा दिख रहा है कि दोनों मेरे पास आते हैं, लेकिन उनकी जो विधि है और तुम्हारी विधि है उसमें क्या अंतर है? वो लोग जिस मार्ग पर चल रहे हैं और तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो उसमें क्या अंतर है? भक्ति योगी जिस मार्ग पर चल रहा है और जो निराकारवादी जिस मार्ग पर चल रहा है उसमें क्या अंतर है?
सरल है,
हाँ, तो वो चीज भगवान खुद बताएंगे।
पहले भी मायावादी से देखें,
हाँ होते
थे शंकराचार्य से पहले,
यस यस यस, बहुत सारे थे
उस टाइम पे, तो इतने बड़े बड़े सेजेस होते थे, यानी कि जो
फिर भी नहीं समझ सकते थे, फिर भी नहीं समझ सकते थे। ये बहुत सारे वाद है ना जो अलग 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 शास्त्र लिखने वाले श्रीमद् भागवत में प्रॉपर लिखते हैं अलग अलग जगह, कि बड़े बड़े चारवाक मुनि बहुत पुराने थे, तो नास्तिक थे चारवाक, तो ऐसे बहुत सारे थे ऋषि बड़े बड़े चारवाक मुनि।
ब्रह्मा जी को भी नहीं पता चला कि कृष्ण कृष्ण है, क्योंकि वो तभी तो गाय वगैरह चुरा कर,
वो तो योग माया था, लेकिन बड़े बड़े ऋषि लोग जो थे वो भगवान को निराकार मानने
वाले
मुनि, चारवाक मुनि था, नास्तिक मुनि था। सो
वो कलयुग के थे या फिर वो पहले चारवाक?
विच
ये
चारवाक? ना ना, तो पहले के, अभी के नहीं है, पहले के चारवाक मुनि। I don't know about it. ये आयुर्वेद वाला चारवाक कब का है?
क्या
होता है? वो भी ऐसे ही होता है। लेकिन वो अलग है। I mean, I never cross check कि दोनों एक ही अलग अलग है। लेकिन हम जिस चारवाक को जानते हैं वो तो नास्तिक था, नास्तिक मुनि था। तो अभी पांचवे में भगवान बताते हैं कि कौन सा विधि सर्वश्रेष्ठ है।
जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है उनके लिए प्रगति कल्पना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कल्पना सदैव दुष्कर होता है।
हाँ, भगवान बहुत स्पष्ट बता दिया कि उन लोग का जो मार्ग है बहुत कष्ट भरा हुआ है, वेरी ट्रबलसम, बहुत कष्ट है उसमें। लेकिन भक्तों का जो होता है वो आसान होता है, भगवान यहाँ तक बोल दिया कि टू मेक प्रोग्रेस इन दैट डिसिप्लिन, उस मार्ग में विकास करना, आगे बढ़ना, ये देहधारियों के लिए बहुत मुश्किल है। देहधारियों के लिए मुश्किल है तो क्या भूतों के लिए आसान है? जो देहधारी नहीं है वो कौन है? भूत है,
भूत के देह नहीं होते,
भूत का सटल सटल शरीर होता है,
सटल यानी
सूक्ष्म शरीर,
नहीं माइंड बॉडी इंटेलिजेंस के सिवा दूसरा बॉडी जैसा
नहीं होता। ना ना, भूत का नहीं, राक्षस का होता है। कुछ भूत प्रभुपाद लिखते हैं जैसे ब्रह्म राक्षस है, खेचरी है, कुछ अलग अलग प्रकार के भूत होते हैं जिनका योनि होता है, वो शरीर होता है वो तो, लेकिन वो भूत कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो नॉर्मल जो भूत होते हैं स्टैंडर्ड भूत,
मैंने पढ़ा था कि उनका बॉडी जो होता है वो सटल बॉडी है, उससे क्रॉस होता है, लेकिन ये हमारी बॉडी उससे सटल
नहीं है। देखो प्रॉपर ऑल्सो से कि उनका उनके समस्या क्या रहती है कि
बॉडी
नहीं होती और इच्छा रहती है, सॉफ्टवेयर रहता है, हार्डवेयर निकल गया। ऐसे समझ लो कि आपको मुंह पे पट्टी बांधी, आंख पे पट्टी बांधी, कान में रोई डाल दी, हाथ पर बांध दिए, और आपकी सारी इच्छा है अभी, आंख से देखना चाहते हो, कान से सुनना चाहते हो, बोलना चाहते हो नहीं सकता। कभी कभी आपको स्वप्न में इसका अनुभव होता है, स्वप्न में आप सो रहे हो और आप कुछ बोलना चाहते हो लेकिन आप स्वप्न में हो इसलिए आप बोल नहीं सकते, तो आप परेशान हो जाते हो कि मैं बोल नहीं सकता, मैं बोलना चाहता हूँ। वेल, हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे कि भूत के लिए, लेकिन मायावादी जो मायावादी जो होते हैं, मीन्स मैं इस तरह इनडायरेक्टली बता रहा था कि वो भूत जैसे होते हैं। तो ऑन अदर वर्ड्स दे आर अपराधीज, कृष्ण अपराधी। अभी ध्यान रखना एक होता है ब्रह्मवादी और दूसरा होता है मायावादी। ब्रह्मवादी की बात यहाँ पर हो रही है, मायावादी की बात नहीं हो रही है, लेकिन ज्यादातर ब्रह्मवादी मायावाद में बदल जाते हैं। तो ब्रह्मवादी भगवान के पास जा सकते हैं ब्रह्म ज्योति में, मायावादी तो ब्रह्म ज्योति में भी नहीं जाता है। अभी आप कहेंगे ब्रह्मवाद में मायावाद में क्या अंतर है, कि वो ब्रह्म को मानता है उत्तम के रूप में, लेकिन मायावाद जो होता है वो तो अपराध करता है कृष्ण के शरीर में, वो अपराध नहीं करता ब्रह्मवादी। उसकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है कि वो ब्रह्म को मानता है बस, और बाकी स्वरूपों में अपराध नहीं करता है।
ब्रह्मवादी अप्रत्यक्ष रूप से मानता है,
वो भगवान को मानता है
लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से।
हाँ, हाँ, भगवान के प्रकाश को मानता है।
फॉर्म में बिलीव नहीं करता,
ये लाइट लाइट का वो भगवान जैसे सूर्य का प्रकाश, सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था, तो सूर्य, हाँ वो सूर्य तक नहीं पहुंच सका, प्रकाश तक अटक गया।
ट्रेन का भी एग्जांपल दिया था, बट दे टेक
व्हाट है, यस भगवान कहते हैं कि सारी जो मुक्ति प्राप्त करने वाले लोग को पुनः पतन प्राप्त होना पड़ता है, हालांकि वो मर्ज होएंगे लेकिन रह नहीं सकते ना, ऐसी अवस्था में कैसे रह सकते हैं जहाँ पर आप देख नहीं सकते, खा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इसलिए फिर आप फिर से आ जाते हैं। हम लोग को मायावादी बड़े बड़े है, तो अभी यही चीज हम आपसे बात करना चाहते हैं कि आप क्या कहते हो कि देहधारी के लिए भक्ति योग नहीं मायावाद जो है वो क्यों मुश्किल है, लॉजिकली क्यों मुश्किल, जो भगवान के निराकारवाद को मानता है, निराकार भगवान को मानता है, वो शरीरधारियों के लिए क्यों मुश्किल है, उसके कारण बताइए वन बाय वन, एक कारण एक वक्त।
फॉर्म होता है हमारा तो जो फॉर्मलेस है उसको कंसीव करना बहुत डिफिकल्ट है, okay. उसके बारे में सोच नहीं सकती कैसा,
ओके सोचना मुश्किल हो जाता, कल्पना कैसे करें कि
कैसा है, कैसे कर पाएंगे,
ध्यान करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्या सोच के ध्यान करें, यू नो यस, एक एक कारण हुआ। और
दूसरा ये कि जो फैक्ट है एक्चुअली बोले कि अब उस फॉर्म को मान रहे हैं लेकिन वहाँ पर तो चूहा भी जा रहा है, वहाँ पे वो खुद की सब नहीं समझे तो हमारी क्या वो मतलब हमारी क्या रक्षा कर पाएंगे,
तो ऐसा तो मानते बोलो।
हाँ ये
हाँ, लेकिन आई नो क्यों मुश्किल क्यों है ये मार,
उसके लिए कि
जैसे समझ लो कि जो शरीर शरीर वाला आदमी है
हाँ।
वो ये उसके लिए ये मार्ग मुश्किल क्यों है,
एक्सेप्टेंस नहीं आ पा रहा ना, क्योंकि जब वहाँ पे मतलब ही इज लाइक कि वहाँ पे वो रेप्टाइल घूम रहा है तो वो कैसे बिलीव करे कि वो खुद की मतलब उस फॉर्म को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है।
नहीं, आई एम आस्किंग कि द पर्सन हु इज हैविंग बॉडी लाइक अस, how it is difficult for us to meditate or to worship or to make to be a devotee, you know, or to be successful, you know, by worshipping formless. What is the problem? I mean, what difficulty we may get?
Easier to engage our senses in beautiful form.
Yeah, like other speak. Yes. You understand the question? The question is. क्वेश्चन इज भगवान यहाँ पर कहा कि वो बहुत ही कष्टदायक है मार्ग, क्यों क्यों कष्टदायक है, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन, क्यों कष्टदायक क्यों है, इसमें इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, भगवान क्यों बोल रहे हैं कि ये बहुत प्रॉब्लमेटिक मार्ग, बहुत ट्रबलसम है, व्हाई कृष्ण इज सेइंग, यू थिंक ऑन दैट, यस
जैसे मतलब हम मंदिर में देखते हैं भगवान के दर्शन करते हैं तो प्लीजिंग लगता है, उनकी सेवा करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, उनको मतलब फल चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, तो ये हम रियली फील कर पाते हैं, ये जो भगवान के साथ जो है जैसे लोग सेवा करते हैं, झूला बनाते हैं, भगवान के माला बनाते हैं, अगर वो निर्विशेषवादी है, कोई है ही नहीं ब्रह्मज्योति, तो हम किसकी सेवा करें या हम कहाँ, मतलब हर जगह वो साइकोलॉजिकल कन्फ्यूज रहेंगे, मतलब ये दीवार देखिए इधर भी भगवान है ऐसा सोचते रहेंगे, इधर भी भगवान है क्या करूँ, ये भी है तो
कन्फ्यूज रहेंगे, भोग लगाने के लिए घंटी किसके सामने बजाऊं,
मतलब उसको सत्य का भगवान दिख रहा है कि भगवान नहीं, ऐसा कंफ्यूज रहेगा हमेशा।
और कोई बात,
चार ब्लेस है, प्रक्रिया जटिल है,
वो क्यों जटिल है?
ये इन्हीं सब के वजह से वो जो उनका सोचना है कि निराकार है, जब आकार ही नहीं है, जैसे उन्होंने बताया कि हम घंटी कहाँ बजाएंगे, भोग कहाँ लगाएंगे, तो ये सब जो उनका है इस सब की वजह से वो चार्मलेस है, उसमें उतना आनंद नहीं है।
ओके, आप बताइए।
बॉडी किसी भी चीज से अगले दिन हमारे कुछ रहेगा ही, उनके पास भय रहता है इस तरह कैसे वो लोग ज्यादा भगवान के फॉर्म को कंसीव नहीं कर पाते, क्या होगा हमारा भी आगे जाके।
ओके, और आप कुछ कहना चाहते हैं? Why this troublesome?
कई बार क्या होता है कि हम जैसे ये जो सेवाएं करते हैं भगवान के लिए और फॉर्म की जो सेवा करते हैं ना, उससे हमें हम हमेशा याद रखते हैं भगवान को, और जो निर्विशेष शादी होती है जो मतलब फॉर्मलेस सोचते हैं ना, वो लोग जल्दी भूल भी जाते हैं भगवान को, उनको याद नहीं रहता है कई बार, सिर्फ मेडिटेशन के टाइम तक याद रहता है।
इंद्रियों की अपनी डिमांड तो चालू ही रहती है,
वो
थोड़ी बंद होती है, तो फिर वो एंगेज कहाँ करेंगे इंद्रियों को?
इंद्रियों को एंगेज करेंगे दुकान खोलने में, जैसे बाबा जी ने खोल के रखी हुई है, इंद्रियों को एंगेज करेंगे।
क्या बात कर रहा है, टॉप 10 में पहुंच गया वो
देशभक्ति में, बोले कि देशभक्ति सबसे बड़ी पर भक्ति है।
यस,
वेरी बिग एग्जांपल।
यस, तो वो एंगेजमेंट तो वास्तव में वही हो गया जो पहले करता था, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, द सेम थिंग,
देयर इज नो वेयर द पिक्चर ऑफ गॉड इन।
या सो इसलिए उनकी डिमांड पूरी नहीं होती इंद्रियों की, मन की। भक्त के लिए तो क्या है कि समझ लो कि उसको भूख लगी तो उसको खा सकता है, वो क्या खाएगा महावादी आपको पहले बताया था एक बार कि प्रभुपाद इस विषय में कह रहे, एक इस तरह से किसी से डिस्कशन कर रहे थे प्रभुपाद, और प्रभुपाद ने अपने शिष्य को कहा था कि इनको प्रसाद खिलाओ, कोई मायावादी था फिलोसोफर डिस्कशन कर रहा था, तो एक छोटा सा प्लेट था उसमें चार संदेश के पीस रखे थे, और प्रभुपाद ने प्रभुपाद के बीच में वो टेबल के ऊपर रख दिए थे, तो प्रभुपाद डिस्कशन चल रहे थे तो प्रभुपाद ने कहा बाद में डिस्कशन के बीच में कि यही समस्या रहती है कि आप लोग भगवान के स्वरूप को मानते नहीं, तो आप लोग खा भी नहीं सकते कुछ, लेकिन लेकिन भगवान के भक्त होते हैं वो तो भगवान के स्वरूप को मानते हैं, तो वो प्रसाद खा सकते हैं, ऐसा करके प्रभुपाद ने संदेश का एक टुकड़ा दिया और अपने मुंह में डाल दिया। सो यू नो, यस, लेकिन देखो हर एक चीज में खाने की बात है, देखने के लिए उसको आँख है तो देखना मांगेगी, लेकिन आप उसको देखने का प्रतिबिंब कर दोगे तो आपको वो क्या कहेगा, बड़ी सुंदर सुंदर पर्वत है, सरोवर है, बड़े बड़े बगीचे हैं, तो इतना सुंदर स्थान है, उसको कैसे बंद कर देखना। सो हर एक इंद्रिय की अपनी डिमांड होती है, सारी इंद्रियों को, जो कि कृष्ण भक्ति में संभव है, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं है, मायावाद है, तो उसमें संभव ही नहीं है ये चीज, ना देख सकते ना सुन सकते ना बोल सकते ना खा सकता है, उसके शरीर की जितनी भी डिमांड है उसको वंश बढ़ाना है वो भी नहीं बढ़ा सकता, वो तो सब मैं इच्छाओं को नाश करना है ना, उसमें तो इच्छा को नाश करो तो कैसे करेगा, वो नाश नहीं कर सकता, इसलिए वो परेशान हो जाए। दूसरा एक रीज़न है कि कुछ निराकारवादी भगवान के स्टेटमेंट को ऐसा कह सकते हैं कि भगवान ने इस मार्ग को बहुत ही कष्टदायक बताया है, चलो मान लिया कष्टदायक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं कृष्ण की भक्ति में जुड़ जाऊँगा, हालांकि मैं हूँ निराकारवादी, लेकिन मैं कृष्ण की भक्ति में जुड़ जाऊँगा, मुझे तो पता है कि कृष्ण का शरीर तो नश्वंत है, आज नहीं तो कल मरने वाला है, वो तो टेम्पररी भक्ति कर लिया, जैसे मैं सफल हो जाऊँगा मैं ब्रह्म में चला जाऊँगा, भ्रम में मर जाऊंगा, ऐसा सोच सकता है कोई, है ना? सोचने के लिए तो हजार है। तो इसमें इसका उत्तर इस तरह से दिया जाता है, नौवें अध्याय में भगवान ने पहले ही बता दिया कि अवजानवंती माँ मूढ़ा मानुषिम तनुमाश, मानुषी मुझे मनुष्य मानने वाला लोग जो है वो मूढ़ है, अवजानवंती मुझे नहीं जानते, अवजानवंती माँ मूढ़ा मानुषिम। और उन लोग का क्या होगा आगे भगवान ने भी बता दिया, मोघाशा मोघ कर्मानु मोघ ज्ञाना मोघाशा मोघ कर्म मोघ ज्ञाना विचेत आसुरिम राक्षसी आसुरिम चैव क्या कहते लास्ट में प्रकृति मोहिनीम श्रुता। तो भगवान ने उसको क्लियर कर दिया कि इस तरह से जो दुष्ट बुद्धि वाले असुरी नास्तिक विचार वाले हैं वो लोग उनकी सारी इच्छाएं सब मोग आशा, मोग का अर्थ होता है विफल, उनके मोग आशा उनकी आशाएं विफल, उनकी इच्छाएं विफल, मोग आशा मोग कर्मणा उनके सारे कर्म विफल, मोग ज्ञाना उनके ज्ञान भी विफल हो जाता है, सब फेल, सब फेल हो जाता है। हाँ बोलो, निराकारवादी जो मायावादी है उसको ये कुछ भी प्राप्त नहीं होता, कुछ भी प्राप्त नहीं होता, बहुत मुश्किल है ना, कोई सेवा ही नहीं तो क्या करोगे आप, है ना? और कुछ कारण
पोस्ट ऑफिस का भी अच्छा एग्जांपल है।
कौन सा?
कि एक यदि सड़क के किनारे पत्र पेटिकाएं होती है, हम उसमें चिट्ठी डाल देते हैं तो अपने जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन उसी तरीके के बक्से और भी है, लेकिन यदि वो डाकघर के द्वारा यदि वो स्वीकृति नहीं है तो उसमें हम चिट्ठी डालेंगे तो नहीं पहुंचेगा। तो उसी तरीके से जो अच्छा विग्रह वगैरह है हम उनको पूजा करते हैं तो वो सही है। जो निराकारवादी है जिनके पास में ऐसा कुछ आकार नहीं है तो उनका जैसे कहीं भी उनका काम नहीं होने वाला।
ओके यस, तो जितना भी मीन्स अगर आपको बाद में भी टाइम मिले तो इसका पूरा आप लिस्ट बना सकते हो क्यों ये मार्ग मुश्किल है, पूरा लिस्ट अलग 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 उपाय वाई 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 इट इज डिफिकल्ट, वाई इट इज
डिफिकल्ट
अचीव कृष्ण, या वाई इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू अचीव द लॉर्ड यू नो एट द एंड ऑफ द लाइफ, बिकॉज कृष्ण सेज इट इज ट्रबलसम, सो यू हैव टू प्रूव इट एज अ डिवोटी, you have to prove why it is troublesome, because Krishna said it is troublesome, भगवान ने कहा ये troublesome है, तब ये आपको ये clear करना है कि कैसे कैसे troublesome है।
enjoyment भी नहीं है,
because yes it's all dry,
it's very dry, जो भक्ति में लगा it's not dry तपस्या,
yes he's
getting higher taste, that's why
संगीत बंद है उसके लिए, सुन नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता है, मैं practically he cannot do anything, जो निराकार को मानता है
सारे पॉइंट को एक साथ
इकट्ठा करो,
ये मायावादी को काउंटर करने के लिए तो पूरे मतलब कई जगह है, जैसे पत्तम पुष्पम फलम में भी
है,
ये सारे को एक साथ सबको लिस्ट कर रहा
हूं, उसको एक आप पूरा बना सकते हो अपने रेफरेंस के लिए, सीधी सी बात है ना कि जब समझ लो कि आप मेरा शरीर दो हाथ वाला है, आपका शरीर दो हाथ वाला है, तो आपको थोड़ा अंदाजा है कि मैं देखता कैसे हूँ, बोलता कैसे हूँ, चलता कैसे हूँ, हाथ कैसे घुमाता हूँ, आपको थोड़ा अंदाजा है, राइट? लेकिन जिसका शरीर नहीं है उसके विषय में आप क्या कल्पना करोगे?
बात भी नहीं कर सकते।
हाँ, बात भी नहीं कर सकते उनसे तो।
और काफी नीरस है, जरा सा भी रस नहीं है उसमें।
हाँ, फिर भी पड़े है उसके अंदर।
ब्रह्म ज्योति है, उनको यही हो जाता है कि अगर ये ब्रह्म ज्योति है तो ना तो हमको देख रहे ना कुछ करने नहीं वाले हमारा, तो फिर हम कुछ भी करें उससे क्या उनको क्या हो जाएगा, कुछ भी मतलब
कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को शरीर नहीं मानते, वैसा भी कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन भगवान को भी शरीर नहीं है उनको भी आत्मा ही है, ऐसे वैसा मानने वाले लोग भी है, कुछ लोग ऐसा भी बोलते ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या,
कुछ लोग टेंपरेरी फॉर्म वर्शिप करने लगे,
पंचदेव उपासना, पंचदेव उपासना एक सिद्धांत है, इसमें पांच देवताओं की पूजा होती है, जिसमें शिव जी, विष्णु, गणेश, दुर्गा और सूर्य, ये पांच की पूजा की जाती है बिगिनिंग स्टेज में। जैसे अभी ऊपर चढ़ना है, यहाँ पर ये अपने ऊपर चढ़ना है, सामान स्टोर रखा है ऊपर अपने किचन में, तो ऊपर चढ़ना है, तो ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी चाहिए, तो वो पांच जो देव है वो सीढ़ी है, उसको ऊपर जाओ, ऊपर ब्रह्म ज्योति है, तो ये पांच सीढ़ी से चढ़ करके ऊपर ऊपर जाकर बैठ गया, फिर सीढ़ी को लात मार देने की, वैसा मानते हैं। पंचदेव उपासना शुरू शुरू में, क्योंकि हम लोग अभी आदत ही नहीं है ना निराकार की उपासना करने के लिए, तो ये पांच शरीरधारी लोगों की पूजा किया जाए, और उसके बाद जब आप पक्के हो जाओ, आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाए, तब आप निराकार की उपासना करो, तब हम ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, तब ये सब क्या भक्ति भक्ति, ये कुछ उपासना पूजा मूर्ति मंदिर सब जगह है भगवान, दिस काइंड ऑफ फिलोसॉफी, इस प्रकार की थियोरी होती है, तो ये सब प्रकार की थियोरी से सावधान रहना चाहिए हमें। हालांकि मेरा इच्छा था कि मैं आपको आगे बढ़ाऊँ, लेकिन दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर, सो दैट्स फॉर हम सात तक कर लेते हैं, नेक्स्ट सेशन के मैं उसमें सातवां छठा सातवां पढ़ लीजिए।
जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ।
शीघ्र उद्धार करने वाला भगवान स्पष्ट बताते, मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ, ऐसा है ना, मृत्यु संसार सागरात, है ना, कौन सा श्लोक है पढ़िए छठा,
ये तु सर्वाणि
कर्माणि मयि संन्यस्य मत् पर
नन्यमेव योगेन गायन्त उपासते
फिर
शेषामहं
समुद्धर्ता
मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरापार्थ मैया वेशित चेतसाम।
भगवान इतना स्पष्ट बता दिया कि किंतु जो लोग मेरी पूजा करते हैं, जो हम पिछले वाले श्लोक में चर्चा कर रहे थे ना, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि उनका जब कृष्ण का शरीर वो भगवान को मानते नहीं है, तो उनको भगवान की कृपा नहीं मिलती, अब जब कृपा ही नहीं मिलेगी तो क्या करेगा वो आदमी, कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर भगवान क्या करते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं, जो मेरी सेवा करते रहते हैं, जो मेरे भक्त है, अनन्य भाव से मेरी पूजा भक्ति में जुड़े हुए हैं, मेरा ही चिंतन करते रहते हैं हमेशा, मेरे मुझ में ही मन लगा के रखा है, मैं खुद उनका उद्धार करता हूँ और जल्दी करता हूँ, ऐसा नहीं कि उनको भी टाइम लगा देता हूँ, ऐसे नहीं, जल्दी करता हूँ, मैं पर्सनली काम करता हूँ, ये कृष्ण से इज वेरी क्लियरली आई पर्सनली डू दिस थिंग। भगवान खुद एक जगह बताया था कुछ कि मैं स्वयं उनके अहम अज्ञान अजमतम, उनके हृदय में भक्तों के हृदय में छिपा हुआ जो अज्ञान है उसको खुद मैं प्रकाश दे देता हूँ, जाके मिटा देता हूँ, उसके हृदय में जाके उनके अंधकार को नष्ट कर देता हूँ, भक्तों को हो सकता है, भगवान ने पहले आगे बताया था ये काम मैं कर सकता, फिर दयामय बुद्धि योगंतम बताया था कि मैं उसको बुद्धि देता हूँ कि जिस भाव से जिस तरह से वो मेरे पास आ सकता है, ऐसा भगवान ने कहा था। भगवान इतना सपोर्ट करते हैं भक्त को, ऐसा सपोर्ट भगवान ने आज तक कभी नहीं कहा कि मैं मायावादी पकड़ता हूँ निराकरवादी पकड़ता हूँ, भक्त को इतना सपोर्ट करते, पर्सनली उसका टेक केयर करते हैं। तात्पर्य में क्या लिखा है, द पर्पस ऑफ दिस वर्स इज दैट अ डिवोटी डज नॉट नीड टू प्रैक्टिस अष्टांग योग इन ऑर्डर टू ट्रांसफर हिज सोल टू स्पिरिचुअल प्लैनेट्स, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकन इज अ बिग पर्पस। ओके, आई जस्ट रीड दिस पैराग्राफ। The responsibility is taken by the Supreme Lord Himself. He clearly states the hearer that He Himself becomes the deliverer. A child is completely cared for his parent by his parents, cared for by his parents, and thus his position is secure. Similarly, a devotee doesn't need to endeavor to transfer himself by yoga practice to other planets. Rather, the Supreme Lord, by His great mercy, comes at once, riding on His bird carrier, Garuda, and at once delivers the devotee from material existence. Although man, who has fallen in the ocean, may struggle very hard and may be very expert in swimming, he cannot save himself. But if someone comes and picks him up from the water, then he is rescued. Similarly, the Lord picks up the devotee from this material existence. One simply has to practice the easy process of Krishna consciousness and fully engage himself in devotional service. भगवान के जो भक्त होते हैं वो पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में जुड़े हुए हैं, अनन्य भाव से जुड़े हुए हैं। उनके हृदय में और कोई इच्छा शेष नहीं है, उनको कुछ नहीं चाहिए भक्ति के सिवा। भगवद गीता में क्या है, भक्ति की भक्ति रसावृत में क्या रखे, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माले। भगवान के भक्त की इस भावना ही उसका सबसे बड़ा गुण है। क्या? कि वो कुछ नहीं चाहता भगवान से, भगवान की प्रसन्नता वही उसका एकमात्र लक्ष्य है। और वो भगवान की कृपा को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, वो आश्रित है। जैसे समझ लो, जैसे कोई बच्चा माँ पर आश्रित है, तो बच्चे को क्या पता है क्या नहीं पता है, माँ को सब पता है ना। और बच्चा जब माँ के पास आता है तो वो चिंता मुक्त हो, है ना, टेंशन फ्री हो जाता है, क्योंकि वो इतना शरणागत है माँ को कि माँ बोले कि बैठ जा तो बैठ जाएगा, सो जा तो सो जाएगा, खा ले तो खा लेगा। इट्स सो सरेंडर, और उसको कुछ आता भी नहीं इतना, इट्स नॉट एक्सपर्ट ऑल्सो, लेकिन माँ उसका टेक केयर करती है। जैसे प्रॉपर एग्जाम्पल दिया, जैसे बच्चा का उदाहरण दिया, वो फुल्ली सिक्योर्ड होता है, फुल्ली सिक्योर्ड। इस तरह से जब कोई भक्त भगवान के संरक्षण में रहता है तो फुल्ली सिक्योर्ड रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहता, उसका सारे प्रॉब्लम भगवान अपने खुद ले लिए है। पहले बताया था ना, मैं सारा रक्षा भी करता हूँ भक्तों का, और उसके पास जो कमी है वो पूरी भी करता हूँ। तो भगवान के भक्तों को और कोई इच्छा नहीं होती, और यहाँ तक कि मुक्ति भी नहीं चाहते। महाप्रभु कहते हैं जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिर भाई तो भी, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए प्रभु, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ हमेशा। तो इसलिए उनका भगवान पर, भगवान उनसे अधिक आकर्षित होते हैं, क्योंकि वो अनन्य भाव से भगवान की सेवा में जुड़े हुए। और वास्तव में देखा जाए मम माया दुरति है, वो पार नहीं कर सकता कोई, भगवान की जो माया है ना उसको कोई पार नहीं कर सकता। ये ज्ञानी लोग का पतन क्यों हो जाता है, क्योंकि भक्ति नहीं है तो क्या करेगा वो आदमी। इतने बड़े बड़े बाबा लोग होते हैं, सब स्कैंडलस बन जाते हैं, क्यों है ना। कितने मुझे चेन लगी है, अंदर जाओ मैं आता हूँ, तुम्हारे जाओ मैं आता हूँ, चेन लगी है ना, एक के बाद एक अंदर।
लगता भी नहीं कि शुरू से भी कभी भक्ति में थे भी।
अरे ये तो सारे सब ढोंगी एकदम बदमाश लोग,
शुरू से ही है कि, और उनके फॉलोअर्स भी वैसे ही रहते हैं वो।
बट दे आर यूजिंग धर्म टू चीट पीपल, अपने दूषित विचारों को, दूषित इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वो धर्म का मार्ग लेते हैं, इसलिए वो बहुत दुष्ट है। लेकिन ऐसे लोग समझ लो, चाहे कोई अच्छा व्यक्ति हो भी, एक बार जशमोदी नंदन प्रभु मुझे बता रहे थे एक जगह लेक्चर में, वो सो कॉन्फिडेंट, प्रभु जी इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे कि कृष्ण भक्ति में आने के बाद भी, दीक्षा वगैरह सब लेने के बाद भी हमारा मन इधर उधर भागता है, तो जो भक्ति में जुड़ा ही नहीं है उसका मन भागेगा, उसमें क्या आश्चर्य है, उसमें क्या आश्चर्य। आप दीक्षा लिया, हरि नाम जप करते हो, ब्राह्मण दीक्षा लेते हो, फिर भी आपका मन चंचल रहता है, आप मन को वश में नहीं कर सकते, भक्ति के मार्ग में जुड़े हो, अब तो महाप्रभु का कृपा है, प्रभुपाद का कृपा है, कृष्ण का कृपा है, वैष्णव का कृपा है, सब कुछ आपके पास है, प्रसाद भी खाते हो, सब कुछ आपके पास है, फिर भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, फिर भी स्ट्रगल कर रहे हो, और वो भाई साहब तो कुछ भी नहीं करते, तो वो बड़ा कहाँ से उसका मन कंट्रोल में रहेगा, चाहे वो कितने बड़ा संप्रदाय का कोई नेता क्यों ना हो। हाउ यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग यू नो टू कंट्रोल द माइंड एंड सेंसेस फ्रॉम सम बिग बिग यू नो बाबास, बिग बिग हिमालय यू नो योगीस, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट, कैन नॉट एक्सपेक्ट। अगर उनका पतन होता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं, तो पतन तो होगा ही, क्योंकि वो तो भक्त है ही नहीं, तो कैसे करेगा कंट्रोल। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि अपनी इच्छा से हम मन को वश में नहीं ला सकते, अपनी इच्छा से इंद्रियों को भी वश में नहीं ला सकते। अगर मन और इंद्रियों को वश में लाना है तो भक्त का तरीका है भगवान की शरणागति से, यू नो एंगेज इन प्रॉपर सर्विसेज, यू नो निराकार की उपासना करने में भी मन भागता है तो निराकार में तो कहाँ ठहरेगा, साकार में भी भाग जाता है मन। तो भक्ति का विधि है कि इंद्रियों को उत्तम वस्तु दी जाए भगवान की सेवा, मन को उत्तम विषय दिया जाए भगवान का चिंतन, लेकिन वो सब उनके पास नहीं है तो वो लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास इतना सब होने के बाद भी हम शक्ल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं आई विल हेल्प, यहाँ पर मैं हेल्प करने को बैठा हूँ, इसलिए भगवान उसको निरंतर रूप से हेल्प करते रहते। भगवान कहते मैं पर्सनली आता हूँ, पर्सनली आता हूँ मैं। अभी आप कुछ बता सकते हैं भगवान कैसे कैसे हेल्प करते हैं क्विकली, एक एक मिनट में कैसे हेल्प करते हैं भक्त को? भक्त के माध्यम से, फिर गुरु के माध्यम से, फिर हाँ वो हो गया भक्त वैष्णव की, शास्त्र के माध्यम से, और कैसे हेल्प करते हैं भगवान?
परमात्मा
के रूप में, फिर सिचुएशन बनाते ऐसे, यस वेरी गुड। क्योंकि भक्तों को कभी कष्ट भी होता है ना, तो भगवान खुद ही कष्ट देते हैं। श्री प्रभुपाद जी जगह लिखे है कि भगवान खुद ही भक्त को कष्ट दे देते हैं जानबूझ करके। आपको लगेगा ये कैसे भगवान है, लेकिन यस श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो में प्रभुपाद जी जगह लिखा है ऐसे तात्पर्य में कि लर्नेड डिवोटी एक्सेप्ट इवन कंडीशन ऑफ द डिस्ट्रेस एज रिप्रेजेंटेड इन द यू नो प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। व्हेन अ डिवोटी इज इन डिस्ट्रेस ही सीज द लॉर्ड एज अपीयर्ड एज डिस्ट्रेस जस्ट टू रिलीव or purify the devotee from the contamination of the material world. हमारी शुद्धि करने के लिए हमें कष्ट दे देते जानबूझ करके, हालांकि वो आपके कोटा में नहीं था, वो आपके कोटा में नहीं था, वो भगवान ने ऐसे ही डाल दिया बीच में जानबूझ करके कष्ट। आपको लगा ये क्यों आ गया, इतना कष्ट, मैं इतना सेवा करता हूँ, ये क्यों प्रॉब्लम, ये सब। डोंट थिंक कृष्ण कैन डू एनीथिंग, कृष्ण किसी नियम से बंधे हुए नहीं है। तुम्हारे कर्म क्या कहते हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है कृष्ण को। तुम्हारा भाग्य क्या कहता है तो भाग्य जाने, कृष्ण को क्या पता, ही डजंट केयर अबाउट दैट, ही इज गॉड, ही इज इंडिपेंडेंट, उनको कोई नियम नहीं है। वो भक्त का कर्म का पूरा बैंक को साइड में कर सकते हो, हटा सकते हो, बोला आई डोंट वॉन्ट कर्म बैंक फॉर दिस डिवोटी, ही हैज नो रूल। भगवान खुद कभी कभी भगवान खुद ही कह देते कि मैं इस डिवोटी का पर्सनल केयर करूंगा, you know? इसका मैं पर्सनल केयर करूंगा। पर्सनल केयर का क्या होता है, उसको क्या देना क्या नहीं देना उसको, यू नो वो सब मैं तय करूंगा, क्या दुख देना क्या सुख देना, क्या सुविधा क्या असुविधा, वो सब मैं तय करूंगा, तुमको कोई इसको छुएगा नहीं, you know? कृष्ण दस दिस वो दिस इज कृष्ण। भगवान कहते कि मैं पर्सनली आता हूँ इस चीज को करने के लिए। भगवान के भक्त क्या कहते हैं, तेनुकंपा सुसमीक्षमाण गुंजान एवात्मकृतम विभव। भगवान जो कुछ भी दिया वो उनकी कृपा के कारण दिया है, you know? तो उनकी कृपा के कारण हमें ये प्राप्त होता है। वॉट एवर वी गेट इट इज कृष्णस मर्सी ओनली, दैट फर्म फेथ शुड बी देयर, इट्स नॉट इजी बट इट शुड बी है। हमें ये फर्म फेथ होना चाहिए कि कृष्ण कृपा ही सर्वश्रेष्ठ है, एंड दैट्स फॉर व्हाटएवर आई एम गेटिंग इज ऑल कृष्णस मर्सी। nothing's happened. Everything is Krishna's mercy. This is ongoing relationship, ongoing reciprocation between devotee and the Lord. Ongoing. Roj chalta hai. Daily hota hai. जैसे आपका कोई फ्रेंड है, समझ लो कोई एक फ्रेंड है, आप रोज उसको बात करते हो, शायद आप रोज उससे यू नो क्या व्हाट्स अप टुडे, यू नो आज क्या चल रहा है, यू नो कहाँ व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आई एम डूइंग. इस तरह से कृष्ण इज आल्सो फ्रेंड एंड ही इज लाइक एवरी डे व्हाट आई एम डूइंग टुडे, व्हाट कृष्ण व्हाट आई एम डूइंग टुडे, दिस एवरी डे थिंग. शास्त्रों में बहुत ऐसा उदाहरण है, जैसे बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी गोप कुमार के विषय में बताते हैं. यू नो गोप कुमार के विषय में इफ यू रिमेम्बर, एक भक्त था गोप कुमार करके, तो वो भगवान उसका उद्धार करना चाहते थे और अंत में वो वैकुंठ धाम पहुँचे, तो भगवान ने उनको कहा कि मैं बहुत प्रयास किया कि तुम भगवान तुम मेरे पास वापस आओ. आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अलग अलग लोगों को भेजा तुम्हें यू नो मेरे पास लाने के लिए, वर्णाश्रम का सुविधा दिया, कोई लूप होल ढूंढता रहा कि कहीं से कहीं कुछ मिल जाए कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ. बहुत प्रयास किया लेकिन अंत में तुम मेरे पास वापस आए. आई मीन ही पर्सनली सो मच वरीड अबाउट इट. भगवान खुद चाहते ऐसे, यू नो जैसे मान लो कि एक डिवोटी है, वो भगवान के पास, भगवान उसको अपने पास ले जाना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल ही वॉन्ट्स टू कृष्ण, बट वो डिवोटी इतना स्ट्रांग नहीं है कि मैं उनके उसका ऐसा कोई तीव्र इच्छा नहीं है कि वो भगवान के पास उनके साथ रहना चाहिए, उसका तीव्र इच्छा नहीं है ऐसे, लेकिन भगवान का इच्छा है इसलिए उसको कैसे भी करके मना लेते हैं, उसको सफल नहीं होने देंगे, यस्याम अनुगृणा में अरिष्य तदनम समय, उसको सफल नहीं होने देंगे, जहाँ जहाँ भी हाथ लगाएगा उसको आप मार देंगे, उसको हटा देंगे, डोंट टच दैट, इसमें मत फंसो, उसमें मत फंसो, यू नो कम टू मी, योर गोल इज यू नो कृष्णा, डोंट गेट दिस इज स्पेशल मर्सी, ये स्पेशल कृपा होती है, यू नो. और भक्त पूर्ण रूप से भगवान के सुनने के लिए फुल्ली डिपेंडेंट, उसको नथिंग, उसका अपना कुछ भी नहीं है, सब भगवान की भक्ति पर आधारित है. और इसके कारण फिर भगवान उसको तुरंत, ऐसा नहीं कि लंबा समय लगेगा, कभी कभी ऐसा भी हुआ है, मैंने देखा है, कभी कभी ऐसा होता है कि उसके आयुष्य लंबा होता है लेकिन भगवान को पसंद नहीं है कि वहाँ पड़ा रहे उधर मटेरियल वर्ल्ड, पहले ले लेते हैं आ जाओ. जैसे मैंने बताया ना कि कोई नियम काम ही नहीं करता उधर, तो कृष्ण के सामने कोई नियम काम ही नहीं करता है, यू कैन डू एनीथिंग. और कभी कभी ऐसा होता है कि वो तैयार हो जाता है आने के लिए लेकिन भगवान का इच्छा कि इसको और प्रचार कराना है. you have to follow, you have no choice. He is the boss. Krishna is the boss. वो जो चाहे वो करना है. एंड वो जो भी करते हैं उसके पीछे उनका प्रेम ही होता है भक्त के प्रति, और कुछ नहीं है. वो जो भी करते हैं हमारे साथ वो उनके अनुकंपा के कारण, उनके प्रेम के कारण हमारे साथ कर रहे हैं. अदरवाइज why he is not fool, he is not इलॉजिकल. कृष्णा कोई ऐसे उनको कोई सपना नहीं आता है, वो बहुत सोच समझ करके प्रेम अपना प्रेम प्रदर्शन कर रहे भक्त के प्रति. That's it, nothing else. So we'll talk about devotional service further. We next थोड़ा extend हो गया, sorry 15 मिनट extend हो गया, लेकिन next time हम प्रयास करेंगे कि we finish full chapter. We'll try our best. Okay?